ہاں جی
بابا آج کی مسلم میں ایک ہوتا ہے کہ بھوگ جو لگانا ہے تازہ لگانا ہے. ایک طرح بولا جاتا ہے کہ بھوگ لگانا بھکتی مارا جائے, بھکتی مارا کا اس بھی سنسکار آپ اس لیے چھوڑنا پڑے گا, ایسا کیوں؟
برہما بابا حد میں سمجھتے تھے سب باتوں کو یا بے حد میں سمجھتے تھے؟ حد کا بھوگ کیا ہوتا ہے اور بے حد کا بھوگ کیا ہوتا ہے؟ سمجھ گئے؟ تو تازہ بھوگ لگانا چاہیے یا جھوٹا جھاٹا باسا باسی لگانا چاہیے؟ ہے کیسا لگانا چاہیے؟ اور
بابا بھکتی مار کے چار دھام دکھاتے ہیں نا, بھکتی مار کے چار دھام دکھاتے ہیں, چار دھام
چار دھام
اس کا بےحد میں کیسا شوٹنگ ہوتا ہے؟ اس کی شوٹنگ بےحد میں کیسا ہوتا ہے؟
شوٹنگ بےحد میں کیسے ہوتا ہے؟ دشائیں کتنی ہیں؟ چار دشائیں ہیں, تو بھارت کی چاروں دشاؤں میں کتنے دھام ہیں؟ چار دھام ہیں, چار مکھی دگپال ہیں, چار مکھی دھرم ہیں. کون کون سے چار دھرم ہیں؟ دیوتا دھرم اور اسلامی, بودھی اور کرسچین, چاروں کی چار دشائیں. اس لیے بھکتی مارگ میں شنکراچاری نے بھارت کی چاروں دشاؤں میں چار دھام بنا دیے, پرنتو وہ تو نہیں جانتے تھے, ہماری بدھی میں تو بیٹھ گیا یہ چار دھام کون ہیں اور چاروں دھام کے ادھشٹھاتا کون ہے. اور ایک پنکھا بند کرنا جی والا
سینٹرل پوائنٹ,
ہاں سینٹرل پوائنٹ یہ والا پنکھا, ہاں
سینٹرل پوائنٹ چاروں دشاؤں کا سینٹرل پوائنٹ بابا کا گھر ہے
چاروں دشاؤں کا سینٹرل پوائنٹ تو ایشان کون ہی ہے, جہاں سے ایشور پرتیکش ہوتا ہے, جہاں سے سوریہ پرتیکش ہوتا ہے. سوریہ کہاں نکلتا ہے؟ اتر اور پورو کے کونے سے. اور
اگر فاؤنڈیشن لگ رہا ہے تم جانتے ہو پھر سوریہ ونسی کل بیکنٹھ میں آئیں گے, رام راجیہ کو بیکنٹھ نہیں کہا جاتا, ایسا کیوں کہا جاتا؟
ٹھیک ہے, تریتا میں رام راجیہ ہوتا ہے, رام کا راجیہ کہاں ہوتا ہے؟ تریتا میں رام راجیہ ہوتا ہے. اور فاؤنڈیشن کہاں لگتا ہے نئی دنیا کا؟ اور نئی دنیا میں جو فاؤنڈیشن لگتا ہے وہ کون سے کل کا لگتا ہے؟ ابھی تو بتایا سینٹرل پوائنٹ کون سا ہوا, ایشان کون مانے ایشور کا, جہاں سے سوریہ نکلتا ہے, سوریہ ونشیوں کا فاؤنڈیشن لگتا ہے. اور
بابا جیسے بچوں کے لیے بابا سے ملنا بے حد کی کال ہوتا ہے, بہت خوش لگتا ہے, تو رام والی آتما کے لیے بے حد کا فل کیا ہے؟
بابا نے مرلی میں بولا ہے تم بابا کہیں گے تو تیری بدھی میں بابا کہنے سے بندی ہی یاد آئے گی, سمجھا؟ اوروں کی بدھی میں بندی یاد آئے یا نہ آئے, لیکن تیری بدھی میں بندی ہی یاد آئے گی. کیا کہنے سے؟ بابا کہنے, کیونکہ بابا تو اسے کہا جاتا ہے جو ساکار اور نراکار کا میل ہوتا ہے. اور
बाबा ने मुझे निकाल दी, जिस पति को निकाले बुलाएंगे तब तक बुद्धि बन जाएंगे।
मुरली ने कहा है कि अगर पति भिखारी को लेकर आएंगे तो तुम पत्थर बुद्धि बन जाओगे।
बाबा ने ऐसे भी कहा है कि पति दुनिया में कोई पावन आत्मा भी नहीं है,
हाँ।
तो दोनों बातें कैसे बाबा के पास
नहीं। बाबा की सभा में जो ज्ञान को समझ चुके हैं उनको लेकर के आना है, या जो समझे ही नहीं है, जिन्होंने लक्ष्य ही नहीं लिया है उनको लेकर आना है।
जिन्होंने लक्ष्य लिया है,
जिन्होंने लक्ष्य ले लिया है तो लक्षण आ जाएंगे पावन बनने के, और लक्ष्य ही नहीं लिया है, ज्ञान ही नहीं लिया है तो बाबा के सामने आकर के वो प्रदूषण फैलाएंगे या पावन वातावरण बनावेंगे, है प्रदूषण फैलावेंगे, तो उसका पाप किसके ऊपर लगेगा? लाने वाले के ऊपर लगेगा। और
अभी नहीं
जाएंगे,
बाबा कहते हैं मैं रोज तुम बच्चों को चिट्ठी लिखता हूं और रोज तुम बच्चों के सामने चिट्ठी पहुंचती है, तुम चिट्ठी को न रिसीव करो तो तुम्हारी गलती या बाबा की गलती? तुम्हारे पास मुरली रोज पहुंचती है या नहीं पहुंचती है? तो रोज की मुरली में रोजमर्रे के सारी जिंदगी के सभी प्रकार के समाधान सभी को मिल सकते हैं। ऐसे नहीं समझना चाहिए कि हमको समाधान नहीं मिलता है, समाधान उनको नहीं मिलता है जिनकी मुरली से लागत नहीं होती है। मुरली से प्यार माना मुरलीधर से प्यार, और मुरलीधर से प्यार हो गया और मुरली सामने आ गई तो समाधान नहीं मिलना चाहिए, है समाधान जरूर मिलेगा।
बाबा हम लोग तो दरभंगा जिला में आए
हैं,
दरभंगा जिला में,
दरभंगा जिला में, हाँ।
मिनी मधुबन आए कि
मिनी मधुबन नहीं है? अच्छा दूर दराज होगा, खगड़िया में ना?
खगड़िया में बहुत दूर
है,
बहुत दूर है।
इससे तो नजदीक ही है, ये मानसा तो दरभंगा से बहुत दूर है, खगड़िया तो वहाँ बहुत ही पास है।
बाबा अष्टदेव किस युग में महाराजा बनते हैं? जब सतयुग में तो आप जो भी रजाइये चलती है और अधूरे नारायण है, तो अष्टदेव किस युग में जाकर के महाराजा बनते हैं?
महाराजाएं सतयुग में होते हैं, महाराजाएं द्वापर में होते हैं, और त्रेता में राजाएं होते हैं, और कलयुग में भी राजाएं होते हैं, और टाइटलधारी महाराजाएं भी होते हैं। और ये महाराजा का टाइटल अंग्रेजों के जमाने में खरीद लिया जाता था, पैसे दे करके खरीदते थे। यहाँ बेहद में पैसे कौन से हैं? जिसके पास ज्ञान रतन ज्यादा है, ज्ञानी बड़ा है, ज्ञान को धारण किया हुआ है तो बड़ा महाराजा बनेगा।
तो संगम युग पे अष्टदेव महाराजा
पर ही अष्टदेव बनते हैं। संगम युग में जो महाराजाओं को महाराजा बनाने वाला है वो विश्व का बादशाह बनता है, खुद
नहीं
वो नहीं बनता, तो फिर कौन बनते हैं? सारे विश्व को संभालने वाले कितने होने चाहिए? क्यों? दिशाएं चार हैं तो चार दिशाओं में चार होने चाहिए, परंतु चार दिशाओं में भी रहे हैं, चार कौन, इसलिए आठ दिग्पाल गए हुए हैं जो आठों दिशाओं को कंट्रोल करते हैं। शनि और राहु, राहु तो देवता नहीं कहा जाता और संदेव देवता तो कहा जाता है। शनि देव जो है वो पसंद किसी को नहीं है, हालांकि उसमें एक गुण भी है, वो दोस्ती करता है जिससे तो निभाता पूरा है। इसलिए शनि देव की दो दशाएं गाई हुई हैं, कौन कौन सी, एक ढैया एक साढ़ साती। साढ़े सात क्यों, आधा क्यों मिला दिया, दो क्यों नहीं, ढाई क्यों, क्योंकि तोड़फोड़ करने वाला है, कुछ न कुछ तोड़फोड़ जरूर कर देगा। और
बामन अवतार कैसा होता है,
मना भगवान बहुत छोटा बन करके आता है, मैं साधारण तन में आता हूँ तो मेरे को लोग पहचान नहीं पाते हैं, बड़ा बन करके आऊं तो सारी दुनिया पहचान लावे। तो छोटा रूप धारण करके आता है, छोटा माने जिसे कोई साधारण रूप को कोई पहचान ही न सके। हाँ जी,
अरे
एक रुको रुको, हाँ तो आपको मना कौन करता है, पूछो, आपकी तो बुलंद आवाज है, आप पूछो। हाँ जी एक मिनट अभी, हाँ
दंगे मारते हैं उसका पाप आता ही होते
हैं। जितने भी प्राण धारण करने वाले प्राणी हैं, उन प्राणियों में सबसे ज्यादा वैल्यू कौन से प्राणी की है, मनुष्य की ज्यादा वैल्यू है, क्योंकि मनुष्य को सबसे जास्ती इंद्रियां होती हैं, जितनी जास्ती इंद्रियां होती हैं उतना जास्ती सुख भी भोग सकता है और उतना जास्ती दुख भी भोग सकता है। तो जास्ती पावरफुल कौन हुआ प्राणियों के बीच में, मनुष्य ही सबसे जास्ती प्राणियों के बीच में पावरफुल हुआ। उसमें मन है, मननात् मनुष्य है, मनन चिंतनशीलता मनुष्य में है, दूसरे कोई प्राणी में नहीं है। तो दूसरे जो भी प्राणी है वो मनुष्य के वाइब्रेशन के आधार पर सुधरते भी हैं और मनुष्य के वाइब्रेशन के आधार पर बिगड़ते भी। मिसाल के तौर पर जंगल में जीव जंतु रहते हैं और शहरों में भी जीव जंतु रहते हैं, मनुष्य भी रहते हैं। जंगल में रहने वाले जो प्राणी हैं, जानवर हैं, वो ज्यादा बीमार पड़ते हैं या शहर में रहने वाले प्राणी ज्यादा बीमार पड़ते हैं, जानवर, क्यों, क्योंकि मनुष्य के वाइब्रेशन का जानवरों पर प्रभाव पड़ता है। मनुष्य सबसे जास्ती विकारी बनता है या जानवर विकारी ज्यादा होते हैं, मनुष्य सबसे जास्ती विकारी भी बनते हैं, मनुष्य सबसे जास्ती निर्विकारी भी बनते हैं। इसलिए कीट पशु पतंगों की बात छोड़ दो, पहले अपनी जाति की बात करनी चाहिए।
जैसे मच्छर, हम मच्छरों की दवाई छिड़क देते हैं, मच्छर मर जाते हैं है? तो उसका बोलते हैं पाप लगता है।
बाबा भी कहते हैं मैं मच्छरों सदस्य तुमको ले जाऊंगा। मच्छर की जैसे कोई वैल्यू नहीं होती, यहाँ आके बैठा और पट से मार दिया, कोई वैल्यू है नहीं। ऐसा बना करके तुमको निरा जो देहभान रहित बना करके ले जाऊंगा, देहभान का अंश मात्र भी नहीं है। और
बाबा मन को सबसे
कंप्लेंट खत्म होने दो। हाँ
आगे आगे बोलो बोलो।
भगवान साकार में धरती में नीचे आए, जो साकार में आकर जो माता कन्या लिख नहीं पाती, बोल नहीं पाती, कहते पर से मुलाकात नहीं करेगी, वो कहाँ जाए?
क्या
बाबा साकार में धरती में आया?
हाँ जी हाँ जी।
और जो माता कन्या बोल भी नहीं पाती, लिख भी नहीं पाती, वो पर्सनल मुलाकात भी नहीं करेंगे, क्या अभी दृष्टि दृष्टि में बोले वो तो ब्रह्मा कुमार भी नहीं हो रहा था
क्या? अभी कितने साल हो गए भगवान को इस सृष्टि पर आए? 73 साल हो गए। क्या पर्सनल मुलाकात की नहीं? की ना,
हमने तो नहीं की ना।
500 करोड़ करेंगे क्या? तो नंबरवार पुरुषार्थी भी होंगे, जैसे जैसे कर्म किए हैं उसी आधार पर प्राप्ति होती है।
बाद में आएंगे तो क्या उनको बाबा लेंगे?
दो हजार के आसपास सब्यक्त वाणी में बोला था, दुनिया वाले कहते हैं कि बाप चले गए, बाप दादा चले गए, और बच्चों के सामने बाप दादा सदा प्रत्यक्ष रहेगा। इसका मतलब है कि बच्चे की लिस्ट से हट करके जो दूसरों के प्रभाव में आ जाएंगे वो बच्चे नहीं है। बच्चे कौन है? जो किसके प्रभाव में रहे? जो आदि से लेकर अंत तक बाप के प्रभाव में। तो अंत में कितने बचेंगे? आज ही बचेंगे। ये कोई नहीं कह सकता है कि बाबा आए और हमको क्यों नहीं मिलते। बाबा तो बच्चों से ही मिलेंगे, तो अभी 73 साल तक तो मिलते रहे कि नहीं मिलते रहे? नहीं मिलते रहे फिर
जो बाद में क्या रहे वो?
अरे बाद में तो दूसरे धर्म वाले आते हैं या सूर्यवंशी आते हैं, तो दूसरे धर्म वाले हो गए, वो कैसे मिलेंगे? और
जिन जिन आत्माओं के शरीर बर्फ में दबेंगे, बर्फ में लगेंगे जिन आत्माओं के शरीर, तो उनमें आत्माएं रहेंगी क्या? अपनी अपनी शरीरों में आत्माएं रहेंगी क्या उनमें?
कोई पांच तत्वों की बनी हुई चीज बर्फ में रखी जाती है तो ज्यों की त्यों बनी रहती है। ये जरूरी नहीं है कि उसमें आत्मा हो। शरीर दब जावेंगे, सुरक्षित हो जावेंगे, लेकिन आत्मा ऊंची स्टेज में चली जावेगी। लेकिन ऐसे तो नहीं हो सकता कि कोई शरीर 5000 वर्ष तक बर्फ में दबे रहे। उनकी भी एक निश्चित अवधि है, जब तक नई दुनिया का आरंभ नहीं होता है, एक्यूरेट सतयुग नहीं शुरू होता है, तब तक की बात है।
अपनी बर्फ में दबने की अपनी।
हाँ जी ठीक है, अगली पीढ़ी तक जो भी अगली पीढ़ी आएगी, राधा कृष्ण जैसे बच्चों के जन्म की पीढ़ी आएगी, तब तक बर्फ में दबे रह सकते हैं। और
बाबा मन को कंट्रोल करने का सबसे सहज उपाय क्या है?
बाबा को अर्पण कर दो। जब बाबा को दे दिया तो जैसे बाबा चलाए वैसे चले, तो दे दिया दे दिया
दे दिया। जो सच्चाई होती है या नहीं,
वो तो एक सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट का ज्ञाता जितना होशियार होगा वो उतना ही अच्छा रिजल्ट देगा। कोई ज्योतिषी बहुत तीखे होते हैं और कोई ज्योतिषी उतने तीखे नहीं होते।
उसमें भी सच्चाई होती है।
ये तो ज्योतिषी विद्या तो भृगु ऋषि ने प्रचलित की है।
ये भृगु ऋषि कहाँ से आए, कौन से युग में आए है? द्वापर से आए। अरे ये सप्त ऋषियों की जो गायन है वो कहाँ का गायन है? संगम का गायन है। जो सप्त ऋषि पुरुषार्थ करके ऋषि मन पवित्र बनते हैं वो ही सप्त ऋषि सतयुग में जाके सात नारायण बनते हैं। परंतु नंबरवार होते हैं या एक जैसे पवित्र होते हैं? नंबरवार होते हैं। तो नंबरवार होने के कारण ही वो द्वापर युग से दूसरे दूसरे धर्मों के आधार बन जाते हैं। और
बाबा आज हम भी जाने के बाद चले गए रामबली आत्मा के साथ, हम सब कब रहेंगे? रामबली आत्मा के साथ सब मृत्यु कब रहेंगे?
अचलगढ़ का मतलब क्या है? गढ़ माने क्या? गढ़ माने किला। किला माने क्या? किला माने संगठन। ऐसा संगठन सूर्यवंशियों का जो चलायमान न हो, चाहे दुनिया की कितनी भी आफतें आवे, दुनिया के कितने भी बड़े बड़े धर्म पिताएं दुनिया में प्रत्यक्ष हो जाएं, बड़ी बड़ी हस्ती वाले प्रत्यक्ष हो जाएं, लेकिन वो उनके बहकावे में ना आवे, वही बेहद का अचलगढ़ है। हद के अचलगढ़ की बात नहीं है। और
पिछले तीन महीने से लोग पुरानी मूवी सुन रहे हैं, नई डीवीडी तो बंद आ रही है, उसका तब तक सामान्य हो जाएगी सुन रही
है। तीन महीने से कौन सी बात?
तीन महीने से पुरानी डीवीडियां सुनी जा रही हैं, ब्राह्मण परिवार में नहीं मिल नहीं रही, तो इसका समाधान कब तक हो जाएगा?
इसका समाधान
मतलब नई मुरली कब से मिलनी शुरू हो जाएगी?
माउंट आबू में ब्रह्मा बाबा ने तारीख दे दी गुलजार दादी में आने की, और उन तारीखों पर नहीं आए, तो कुछ रद्दोबदल करनी पड़े या नहीं करनी पड़े? ऐसे ही एडवांस में भी कुछ कारण या कारण परिवर्तन करना पड़ता है, और इसी बहाने से आपको पुरानी मुरलियां सुनने को मिल जाती, नहीं तो नई नई आती रहती हैं, सब नई नई सुनते हैं, पुरानी कोई सुनता ही नहीं। और
समाजियों ने भारती का चित्र हाथ कर कितना हंगामा मचाया, ये भी नूंद है, फिर भी ऐसे ही होगा। आर्य समाजियों ने भारती का चित्र हाथ कर कितना हंगामा मचाया।
समझा समझा। हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। एक बार हुआ है वो दोबारा फिर भी होगा जरूर। शूटिंग एक बार जैसी होती है, रिहर्सल एक बार जैसी होती है, दोबारा अगर रिहर्सल होगी तो वो ही सीन सीनरी सामने आवेगी या नहीं आवेगी। उन्होंने तो ग्लानी करने के लिए वो उठा लिया चित्र। यहाँ भी आगे चल करके ऐसे आर्य समाधि बच्चे यज्ञ में एडवांस में भरे पड़े हैं, जो अंदर से विरोधी हैं, वो इस ताक में रहते हैं कि कोई ऐसा प्रूफ पकड़े और अखबार वालों को, मीडिया वालों को, टीवी वालों को हम दे दें और वो हो अल्लाह मचाए। आगे भी कुछ नहीं हुआ और अब भी कुछ नहीं होने वाला। हाँ
बाबा, जो ड्रामा की नूंद है,
हाँ।
तो हर एक आत्मा उस नूंद से बंधी हुई है,
हाँ।
क्या पुरुषार्थ करके वो नूंद को बदला जा सकता है?
आत्मा एक रिकॉर्ड है
जी, रिकॉर्ड है।
तो जो आत्मा अविनाशी रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड को बदला जा सकता है?
नहीं बदला जा सकता।
नहीं बदला जा सकता।
फिर तड़फना क्यों ली
है?
अगर कोई गलत काम हो जाता है, हाँ। फिर हमें पश्चाताप और तड़फना क्यों लगती है?
ये तो अच्छी बात है, पश्चाताप किया माना सुधार की तरफ जा रहे हैं। अगर गलती की और पश्चाताप किया ही नहीं तो सुधार हो सकता है? सुधार नहीं होगा। ये भी ड्रामा में नूद है। कोई पश्चाताप करते हैं, कोई पश्चाताप करते ही नहीं, कोई सुधरते हैं, कोई सुधरते ही नहीं, ये भी ड्रामा में नूद है। और
बाबा पानी पी लीजिए, गर्म हो जाएगा।
गर्म हो जाएगा, गर्म हो जाएगा तो जल्दी पच जाएगा। अच्छी बात है।
ऐसा कह के सुनते हैं ड्रामा में फिक्स
है,
अगर ये कहते हैं इतने से लोग बाबा को बोलते हुए इस बात को कुछ सुधरते क्यों नहीं? बाबा जब भी जान है वो नूद है, सुधरते नहीं। वो तो नूद है तभी तो सुधरते नहीं,
ठीक है?
फिर क्या सुधरेंगे नहीं?
ड्रामा गे के लिए है या पास्ट के लिए है? अरे ड्रामा भविष्य के लिए है या पास्ट के लिए है? जो बात पास्ट हो गई वो जानकारी में आ गई, और जो जानकारी में आ गई वो नहीं बदलेगी। बाकी भविष्य में क्या होना है वो तो कोई जानता ही नहीं है, जब तक आत्मा संपन्न न बने। तो भविष्य के लिए ड्रामा को कभी अप्लाई नहीं करना है। ध्यान में आने के बाद शूटिंग चालू हो जाती है। जैसे वो ड्रामा होता है, उस ड्रामा में भी कोई डायरेक्टर होता है, और डायरेक्टर के कनेक्शन में आने के बाद रिहर्सल चालू हो जाता है। ऐसे ये भी बेहद का ड्रामा है। क्या इसे बेहद के ड्रामा में जो डायरेक्टर बाप है, उस डायरेक्टर बाप के कनेक्शन में जो भी बच्चा आता है, जब से भी निश्चय बुद्धि बनता है, माने जब से जन्म लेता है, निश्चय बुद्धि माना जन्म लेना, तो जब से जन्म लेता है तभी से उसकी शूटिंग रिहर्सल शुरू हो जाती है, उसकी आत्मा में रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है। और
बाबा मुरली में बोला है, हल अपने धर्म में रहे तो भी बाबा को याद करने से अच्छा पद पा सकते हैं। अपने धर्म में भल रहे, इसका मतलब क्या है? अपना
कोई भी धर्म वाला हो, हर धर्म में ऊंचे पद वाले भी होते हैं और हर धर्म में नीचे पद वाले भी होते हैं। हर धर्म में अच्छा अच्छा पार्ट बजाने वाली आत्माएं भी हैं, और हर धर्म में बुरे से बुरे पार्ट बजाने वाले भी हैं। भले कोई किसी धर्म का हो लेकिन वो अपने धर्म पर आरूढ़ हो करके रहे, क्या घड़ी घड़ी चेंज होने वाला ना हो, तो ऐसी आत्मा ऊंचा पद पा सकती है।
महाभारत जो लड़ाई जो होगा उसका शुरुआत 2018 से पहले हुआ की बात,
2018 कहाँ से पकड़ लिया? हाँ पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है, वो तो एक ऐसे ही एवरेज बता दिया। हाँ
जो
बच्चे नहीं कर पाते हैं
उनकी शूटिंग कैसे होगी?
उनकी शूटिंग कैसे होगी? चलो भट्टी नहीं कर पाते हैं, जैसे बहुत सी बांधेलियों के बारे में बाबा बोलते हैं, बहुत ऐसी बांधेली माताएं हैं जो बाबा से कभी मिली भी नहीं है, लेकिन पत्र ऐसे ऐसे लिखती हैं कि उनके पत्र पढ़कर के बाबा की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। तो वो निश्चय बुद्धि है या निश्चय बुद्धि है? उनको निश्चय बुद्धि कहेंगे माना जीवित हैं या मरी हुई हैं? बाबा के बच्चे हैं या नहीं है? बाबा के बच्चे हैं।
जो माता जी माने ही है
हाँ।
और रोज मूर्ति सुनती है
हाँ।
या सरगन भी करती है आई महीना, लेकिन वो भट्टी नहीं कर पाती, लिखना भी नहीं जानती
हाँ।
वो
नहीं जानती।
वो लिखना भी नहीं जानती
हाँ।
वो क्या करे?
कानों से सुनना तो जानती है,
सुनते हैं और
फिर क्या बात है?
बाबा से कैसे मिले?
बाबा से कैसे मिले? बाबा तो कह दिया कि अगर रेगुलर हैं ज्ञान सुनने में, बाबा की मुरली सुनने में रेगुलर हैं, 6-8 महीने से साल से रेगुलर हैं, तो भले बांधीली हैं बाबा से मिल सकती है। और
कितना याद करने की कोशिश करते हैं आदमी आदमी
बाबा को बहुत याद करते फिर भी याद नहीं आती मुरली भी नहीं सुन सकते और
कुछ भी नहीं कर सकते,
इतना बंधन है। मुरली भी नहीं सुन सकते, बाबा को याद भी नहीं कर सकते, क्यों याद क्यों नहीं कर सकते? याद से ही तो सब कुछ प्राप्ति है। हाँ जी
बाबा, जो जलंधर है वो बेहद में किसका पाठ है?
जल माने क्या?
ज्ञान
जल को जो धर के बैठ गया है, जो ज्ञान जल है वो किस काम आता है? जल किस काम आता है? जल आता है कपड़ों को पवित्र बनाने के काम। किस काम आता है? कपड़ों को पवित्र बनाने के काम। तो जो ज्ञान जल है वो भी शरीर रूपी वस्त्रों को पवित्र बनाता है। शरीर रूपी वस्त्र भी उतने ही पवित्र बनेंगे जितनी आत्मा पवित्र बनेगी। तो जलंधर की पत्नी का क्या नाम था? है वृंदा। पवित्र थी या पवित्र शरीर वाली थी? पवित्र शरीर वाली थी। उसको धर के बैठ गया कि नहीं बैठ गया? तो उसका नाम क्या पड़ा? जलंधर। जब तक उस पवित्रता की शक्ति उसके साथ रही तब तक दुनिया में उसको कोई भी विजय नहीं कर सका, कोई जीत नहीं सका, भगवान भी जीत नहीं सका। जब वृंदा को डिगाई दिया, हिलाई दिया, गिराई दिया, तो जलंधर भी नीचे गिर गया। और चैतन्य पकड़ता है या जड़ पकड़ता है? आत्मा चैतन्य है या शरीर चैतन्य है? आत्मा चैतन्य है। तो जो चैतन्य है उसमें ताकत ज्यादा है या जड़ शरीर में ज्यादा ताकत है? है? चैतन्य आत्मा में ज्यादा ताकत है, और वो ज्यादा ताकत जिसे चैतन्य कहते हैं उसकी परिभाषा मुरली में बताई है, बोलते चालते को चैतन्य कहा जाता है। तो आत्मा शरीर धारण करती है तो बोलती भी है, और आत्मा शरीर नहीं भी धारण करती है तो भी चलती है या नहीं चलती है? है? चलती है। तो बोलते चालते को चैतन्य कहा जाता है। जड़ जो है
निकल नहीं सकती। कैसे निकले सर? जैसे शंकराचार्य के बारे में बोलते हैं, वो भी कभी कहीं भी आ जा सकते हैं, किसी भी शरीर और आ जा सकते हैं।
शंकराचार्य कहीं भी आ जा सकते थे। शंकराचार्य
थे वो कहते उनके लिए होगा कोई गायन के, वो कहीं भी आ जा सकते थे।
वो गायन किसे ने किया?
मनुष्य ने।
मनुष्य झूठे होते हैं सच्चे होते हैं?
बाबा मुरली में आया है, बाप का वर्षा पा लिया तो वहाँ सोना बैठना उठना कैदे सिर होता है। एक तरफ बाबा बोलते हैं स्वर्ग में सोना होता ही नहीं।
बाप का वर्षा स्वर्ग में ही होता है या संगम युग में भी होता है?
संगम युग।
ऊंचा वर्षा कहाँ होता है? तो संगम युग में ऐसा वर्षा नहीं मिल सकता।
बाबा के पास आ रहे हैं, क्या उनके लिए निश्चित है कि वो आदि में बाबा के साथ हैं?
कौन?
जो आत्माएं अभी बाबा से मिलने आ रही हैं, क्या उनके लिए पक्का है कि वो आदि में बाबा के साथ
हैं? नहीं तो कैसे आ गई? जो बूढ़े बूढ़े दीदी दादी दादाएं हैं, वर्षों पुराने हैं, वो ही मुरली सुन रहे हैं जो हम सुनते हैं, उनकी बुद्धि में ये ज्ञान नहीं बैठता है। और हमारी बुद्धि में, हमारी सबकी बुद्धि में वही मुरली की बातें बैठ रही है, तो इसका कुछ तो कारण होना चाहिए। इसका कारण यही है कि हम जो एडवांस में चलने वाली आत्माएं हैं, वो यज्ञ के आदि में भी बाबा से ज्ञान का वर्षा लिया था। जो वर्षा हमने लिया था वो उन्होंने नहीं लिया। उन्होंने स्थूल गोद का लाभ लिया और हमने मुख से निकली हुई वाणी का लाभ लिया।
हाँ, यज्ञ में ना कुछ सेवाएं लेनी बंद कर दी है, स्थूल सामान की सेवाएं बंद कर दी है, यज्ञ में लेना बंद कर दिया है माताओं का।
यज्ञ में
स्थूल सेवा जो कुछ करती है माताएं, उसको बंद कर दिया देना।
स्थूल सेवा करने के लिए आपको मना कर दिया? स्थूल सेवा मना आश्रम में आकर के
कोई सामान वगैरह की सेवा लाते हैं
वो तो ठीक है। सुनो सुनो, जो भी ब्रह्मा कुमारियां सरेंडर हुई है, वो सरेंडर होने का मतलब क्या है? कोई बच्चा है, गोद लेता है माँ बाप की, तो उसकी परवरिश कौन करते हैं? माँ बाप करते हैं। और दूसरे कोई परवरिश करने लगे तो हिसाब किताब बनेगा या नहीं बनेगा? ऐसे यहाँ भी है।
तो बाबा जी कहाँ सफल करेंगे?
कहाँ सफल करेंगे? आपको पैसा देने के लिए किसने मना कर दिया?
और सामान भी होता
है
घर में, और भी तो सामान
होता। घर में पुराना सामान हो तो बाबा कहते हैं मैं करिणी घोर ब्राह्मण बन के आया हुआ हूँ। पुराना धुराना जो कुछ भी तुम्हारे घर में है तुम्हारे काम का नहीं है, तो तुम बाबा के यज्ञ में दे दो भले, लेकिन मार्केट से खरीद करके देने की जरूरत नहीं है। आपके पास पैसा है तो बाबा के यज्ञ में पैसा नहीं है क्या?
नहीं, बाबा ये तो किसी तो नया सामान आता है।
नया सामान आता है,
आ जाता है बाबा घर में,
घर में आ जाता है, घर में आ जाता है और आपके घर में ज्यादा आ गया, तो ज्यादा आ गया और नया सामान आ गया। लेकिन वो जो सामान आ गया वो खरीदने वाले ने ज्यादा पैसा देकर के खरीदा है या कम पैसा देकर के खरीदा है?
क्या पता बाबा,
क्या पता बाबा, तुम्हें पता करना चाहिए ना कि बाबा के जो बच्चे हैं सरेंडर्ड वो ज्यादा पैसे वाला कपड़ा पहनते हैं, ज्यादा अच्छा खाना खाते हैं, ज्यादा बढ़िया मकान में रहते हैं, खर्चीले हैं या कम खर्च वाला नशी है? तो आपको भी ऐसा ही बनाना चाहते हैं, इसलिए वो जो खर्चीले खर्चीले फल हैं, बेमौसम के कोल्ड स्टोरेज से उठाए हुए हैं, दुनिया तो उनको नहीं खाती है लेकिन अपना प्रभाव जमाने के लिए आप बहनों के सामने लाके रख देते हैं कि देखो हम तुम्हारा कितना ध्यान रखते हैं। वो फल नुकसान करते हैं या आराम देते हैं?
तो मौसम के अनुकूल
कोई भी चीज हो, मार्केट की कोई भी नई चीज खरीदने की सरकार नहीं है।
और कई माताओं के पास ऐसा नहीं होता सेवा में देने के लिए, वो कुछ अनाज वगैरह दे सकती है तो वो कुछ
खेल नहीं बन करके देना, चोरी से क्यों देती है?
चोरी हो देते
हैं। आओ क्या,
हाथ में पैसा नहीं होता
है, तुम्हें पैसा क्यों नहीं होता? जब वो अर्धांगिनी है, अपने घर में अर्धांगिनी है कि नहीं, तो आधे के ऊपर उनका हक है कि नहीं, तो हक से ले ले।
वो अनाज दे सकती है,
वो जो अनाज देती है पति की परमिशन से देती है क्या? नहीं नहीं देती है, वो पैसा भी दे सकती है फिर।
बाबा अगर कहीं सर्विस करने जाते हैं वहाँ से पीके सेंटर से दो चार जिज्ञासु उठा लिए और वो ब्रह्मा कुमारी बीमार पड़ गई, तो उसका सर्विस वाले आत्मा के ऊपर भार पड़ता है क्या, क्या पाप लगता है? अगर कहीं सर्विस करने जाते हैं वहाँ से पीके सेंटर से दो चार जिज्ञासु हिल गए
और एडवांस में
ले लिए और ब्रह्मा कुमारी बीमार पड़ गई,
हाँ।
तो उसका उस आत्मा पे जो सर्विस करने जाती है पाप लगता है?
बीमार पड़ गई, क्यों बीमार पड़ गई? अरे ब्रह्मा कुमारी को तो खुश होना चाहिए, क्या खुश होना चाहिए? अरे हमारी ज्ञान की मटकी का भरा हुआ मक्खन, अच्छी अच्छी आत्माओं के मक्खन के गोले अरे भगवान ने चुरा लिए, तो एकदम खून के गर्गौटा होना चाहिए। वो बीमार हो गई तो राक्षसों का ज्ञान सुनती होगी।
हाँ।
इन्होंने नहीं सुना, जरा जोर से बोलो।
चौरासी लाख योनियों में भटकती है आत्मा, आगे क्या बोले माता जी?
हाँ, तो क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं कि कोई मनुष्य आत्मा ऐसी भी है जो 84 लाख योनियों में जैसे पार्ट बजाया जाता है ऐसा ही पार्ट बजाती है। क्या कोई कोई आत्माएं ऐसी भी हैं जो 84 के जन्म तो लेती हैं, 84 का चक्र तो लगाती हैं, लेकिन 84 जन्मों में ऐसे ऐसे पार्ट बजाती हैं जो 84 लाख योनियों वाले बजाते हैं, जानवरों जैसे, कीड़े मकोड़े जैसे, पक्षियों जैसे।
फैमिली विस्तार में चराई भी जाना चाहिए या सांप भी कितना चाहिए?
सागर की गहराई में जाना चाहिए तब रतन मिलेंगे, या डरेंगे कि सागर की गहराई में जाएंगे तो कहीं डूब न जाए तो रतन मिलेंगे। तो जो कमजोर होते हैं वो दूसरों को कमजोरी का ज्ञान देते हैं, कहते हैं गहराई में नहीं जाना, ज्ञान सागर की गहराई में जाएंगे तो डूब जाएंगे। हमको तो बहुत डर लगता है, कहीं हम उस गहराई में गए तो ये बढ़िया बढ़िया जो भवन हमको मिला हुआ है, ब्रह्मा बाबा ने दिया है, अब बड़े बड़े लकिया लकलके कपड़े में पहनने को मिल रहे हैं, बढ़िया बढ़िया 36 प्रकार का भोजन खाने को मिल रहा है, ये सब चला जाएगा हाथ से तो हम तो डूब जाएंगे। इसलिए गहराई में जाना अच्छा नहीं है। वो गुरु ऐसा ही सिखाएंगे, और जो पावरफुल गुरु होगा वो क्या सिखाएगा, है खुद भी गहराई में जाएगा और दूसरों को भी सागर की गहराइयों में ले जाकर के ढेर रतन निकालेगा और निकलवाएगा। ये रतन ही तुम्हारे जन्म जन्मांतर के सच्चे रतन बन जाएंगे। यहां जिसके पास ज्ञान धन ज्यादा होगा वो जन्म जन्मांतर ज्यादा साहूकार बनेगा। सिर्फ 21 जन्मों की ही बात नहीं है, 21 जन्मों के आधार पर 63 जन्मों का भी ऐसा ही हिसाब किताब बनता है।
बाबा गीता पाठ शाला के जो रजिस्टर है उसपे साइन करोगे क्या या चले जाओगे? गीता पाठ शाला के जो रजिस्टर है उसमें साइन करोगे क्या आप अभी?
गीता पाठशाला के रजिस्टर में जब भी बाबा आते हैं जहाँ कहीं भी मिनी मधुवन में, जो बाबा ने बोला जहाँ जहाँ मिनी मधुवन बनावेंगे वहाँ बाप दादा आवेंगे, तो आवेंगे तो आप अपना गीता पाठशाला का रजिस्टर नहीं ला सकते।
चंडीगढ़ में साइन नहीं किया,
आप सारे इकट्ठे करके पहुंचा देते। आप जब भी आते हैं तो अपने रजिस्टर इकट्ठे करके और सारे इकट्ठे करके पहुंचा दो, साइन करके दे देंगे। और जोर से बोलो, ये हरियाणवी हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे। मुरली के पॉइंट याद नहीं रहते। अच्छा, मुरली सुनाने वाला बाबा तो याद रहता है, तो बस बाबा याद बना रहे, उससे क्या होगा, आपकी आत्मा बाबा को याद करते करते बाबा की तरह बिंदी बन जाएगी, और जब पूरी बिंदी बन जाएगी तो सारा ज्ञान उसमें अपने आप ही मर्ज हो जाएगा।
जो दुनियावी सुख सुविधाएं होती हैं, वैभव होते हैं, वो ईश्वर से दूर करने वाले हैं बोलते
हैं। धन संपत्ति माया नहीं होती है, धन संपत्ति को माया गुरुओं ने बताया है। बाबा तो कहते हैं कि जो यहाँ ज्ञान धन ज्यादा धारण करता है, ज्यादा ज्ञान धन लेता है, वो बड़ा बड़ा साहूकार जन्म जन्मांतर बनता है। तो क्या नीचे गिराने वाला है? बाबा की दी हुई चीज जो है वो नीचे गिराने वाली है या ऊंचा उठाने वाली है? हाँ, ये दुनियावी गुरुओं की धारणा है कि धन संपत्ति जो है वो नीचे गिराने वाली है, माया है।
बाबा ऐसा क्यों कहा गया है बाप दादा के राइट हैंड बनो, लेफ्ट हैंड नहीं। क्यों कहा गया
त्रिमूर्ति के चित्र में शिव बाबा ऊपर है, कोई लेफ्ट हैंड में है कोई राइट हैंड में भी बैठा है। राइट हैंड में कौन बैठा है और लेफ्ट हैंड में कौन बैठा है? है कौन?
शंकर।
शंकर तो फायदे में कौन है? फायदे में कौन है? हैं? शंकर फायदे में है। हाँ, ब्रह्मा वाली आत्मा जो स्थापना करने वाली है वो फायदे में, और उनके साथ साथ जो कन्याएं माताएं हैं वो भी ब्रह्मा की फॉलोअर हैं। माताएं हैं ना, वो बड़ी माता है और बाकी सब नंबर वार है। तो माताएं ज्यादा प्राप्ति करती हैं या पिताएं ज्यादा प्राप्ति करते हैं सुख की?
माताएं।
जो जन्म जन्मांतर के राजाएं बनते हैं रुद्रमाला के मण के, वो जन्म जन्मांतर लड़ाई करते हैं, खून खराबा करते हैं, और जो रानियां बनती हैं वो खून खराबा करने जाती हैं युद्ध में कि आराम से रहती हैं? तो क्या चाहिए? हैं? आराम चाहिए ना, मस्ती चाहिए, क्या लड़ाई संघ में रखा है? हाँ, राजा बनाने आए हो तो आप राजा बनेंगे? बनेंगे तो फिर सर कटाना पड़ेगा। है लक्ष्मी ज्यादा आनंद में रहती है जो ब्रह्मा को लंबे समय तक फॉलो करती है, या नारायण ज्यादा आराम में रहता है जन्म जन्मांतर? है लक्ष्मी ज्यादा आराम लेती है, ज्यादा सुख भोगती है, क्योंकि प्योरिटी की पावर लक्ष्मी में ज्यादा बनी रहती है या नारायण में जन्म जन्मांतर ज्यादा बनी रहती है? है नारायण वाली आत्मा द्वापर कलयुग में जाकर के राजा बनेगी। भारत के राजा हैं तो पतित होते रहे, और भारत की रानियां पतित बनती हैं? नहीं। तो ज्यादा पतित बनेगा तो ज्यादा दुखी होगा या कम दुखी होगा? ज्यादा दुख होता है। हाँ तो आप राजा बनेंगे? आप तो नारी हैं कि नर हैं? नारी हैं कि नर हैं? बाबा ने तो मुरली में यही बोला, नारी से क्या बनना है? हैं? लक्ष्मी बनना है। तो आप लक्ष्मी बनेंगे या नारायण बनेंगे? आप बच्चे हैं या बच्ची हैं?
अभी तो बच्ची हैं।
अभी बच्ची हैं ना, अभी नारी है ना, तो नारी से क्या बनेंगे? लक्ष्मी बनेंगे।
बाबा एक पांच लाख में आया था
क्या? पुरुष बन जाएंगी। माना माना जो शिखंडी का पार्ट है महाभारत में, आधा टाइम पुरुष आधा टाइम स्त्री, वो बढ़िया पार्ट है। अरे जो होगा तो देखा जाएगा। अरे बात मत करो।
सर्विस होता है ना,
लौकिक सर्विस, हाँ,
तो वहाँ पे बाकी लोग तो बाबा के बच्चे सच्चे होते और बाकी लोग तो बहुत झूठे होते, तो तकलीफ करते, तो तकलीफ देने के कारण ना तो वो विपरीत परिस्थितियाँ बनाते हैं, तो उनको सामना करना चाहिए या सज्जू करने से और ज्यादा करना चाहिए?
जो नौकरी करते हैं वो नौकर होते हैं, नौकर को दास दासी कहा जाता है कि राजा कहा जाता है, क्या कहा जाता है, है? दास दासी कहा जाता है। और दास दासी का जो काम करेगा संगम युग में तो संस्कार कौन से बनेंगे? अरे बोलो ना, है? दास दासी के संस्कार बनेंगे। यहाँ जो संस्कार डालेंगे वो ही संस्कार 63 जन्म में पहुंच जाएंगे आधीन रहने के। तो अपन को देखना है कि भगवान बाप आया हुआ है हमको स्वाधीन बनाने के लिए, राजा बनाने के लिए, और अंग्रेजों ने जो पढ़ाई पढ़ाई है वो पढ़ाई पढ़ाई है नौकरी करने के लिए। तो अंग्रेजों की पढ़ाई पढ़ करके नौकर बनना, दास दासी बनना अच्छा है या बाबा की पढ़ाई पढ़ के राजा रानी बनना अच्छा है? क्या अच्छा है, है? अच्छा पढ़ो, फिर ये आपका प्रश्न खत्म है। आपका स्वभाव संस्कार पुरुषों का नहीं है, अकेले का, जितने भी एडवांस में कन्याएं माताएं हैं, जितने भी एडवांस में कन्याएं माताएं हैं उनके सबके स्वभाव संस्कार जन्म जन्मांतर के पुरुष जैसे हैं।
भगवान नारायण वाला बनने पाएंगे
क्या?
तो बाबा लक्ष्मी बनेगी क्या वो भी?
लक्ष्मी
एडवांस पार्टी वाली जो कन्याएं माताएं हैं,
हाँ,
वो लक्ष्मी बन पाएंगी क्या?
बनो
नहीं बाहर जैसे
कौन मना करता है?
नारी से लक्ष्मी बोल रहे थे,
हैं?
नारी से लक्ष्मी बोल रहे ना,
हाँ, लक्ष्मी जैसे सहन कर रही है ऐसे सहन शक्ति की देवी बन के रहो घर में। हाँ, रुको रुको, अरे वो लक्ष्मी बनने से रह जाएंगी। हाँ, हाँ बोलो। हाँ हाँ,
रानी बनने वाले तो नहीं है?
नहीं,
तो फिर कैसे होगा ऐसे?
कैसे होगा ऐसे?
कैसे बनेंगे?
आपका लक्ष्य क्या बाबा ने दिया है?
लक्ष्य तो नारी से लक्ष्मी और नर से नारायण यही दिया है।
लेकिन आप नारी हैं कि आत्मा हैं? बाबा ने आपको क्या कहा है, पहले नर नारी बनो या आत्मा बनो? जब आप आत्मा बन गए तो आत्मा तो पुरुष होती है, स्त्री तो होती नहीं, तो आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाओ तो आप राजा ही बनेंगे।
जगदम्बा के 3 जन्म स्त्री के
क्यों? 3 जन्म,
हाँ, जबकि मुरली में बोला है कि 2 नर होंगे, 2 जन्म नर और 2 नारी के होंगे।
ऐसे नहीं बोला, मुरली में बोला है ज्यादा से ज्यादा कोई आत्मा के लगातार 2 जन्म या तो स्त्री के हो सकते हैं या तो लगातार 2 जन्म पुरुष के हो सकते हैं। क्या इससे ज्यादा नहीं हो सकते?
जगदम्बा के
ये आपने कौन सी मुरली में पढ़ लिया? कोई मुरली है जिसमें आया हो जगदम्बा के 3 जन्म है? एक जन्म आदि का मान लिया, किसको? वो तो जालंधर की कोई माता के बारे में बताया, जगदम्बा के बारे में बताया क्या? वो तो नहीं बताया, ये तो आपने किसी से सुन लिया, सुन करके मान लिया। अब पक्का कैसे कर लिया कि वो जगदम्बा ही थी? और रुको, जगदम्बा का जो पार्ट है वो किसी से दबके रहने वाला है, है? वो किसी से दबके रहने वाला नहीं है। दुनिया के जितने भी पुरुष हैं सब क्या है, सब दुर्योधन दुशासन है। तो सबको पिटाई करने वाली है या किसी को छोड़ने वाली है? हाँ? वो अम्मा है ना, क्या है, जगदम्बा है, लक्ष्मी से भी ऊंची गद्दी है या नीची गद्दी है? ऊंची गद्दी है। तो जिसकी ऊंची गद्दी है वो पुरुषपने के अहंकार में रहेगी, अधिकारी बनने के अहंकार में रहेगी या अधीन बन के रहेगी? अधिकारी बनकर के रहेगी। उसको कोई कुल्हाड़ी से मार सकता है?